Conference Center at Temple Square in
Salt Lake City के Temple Square सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों की यीशु मसीह की गिरजा के 185th वे अर्थवार्षिक महासम्मेलन है इस शनिवार की दोपहर इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पद अधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस अधिवेशन के लिए संगीत की प्रस्तुति गायन मंडली में शामिल युवा अभिवेद बालिग स्टेक डेविस और वीबर क्षेत्रों के द्वारा पेश की जाएगी इसका प्रसारण बॉनिवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया जा रहा है बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेख या अन्य उपयोग वर्जित है अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजा के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे
भाइयों और बहनों हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 185 अर्थवार्षिक के दूसरे अधिवेशन में स्वागत करते हैं अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन के संचालन करता है ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है हम आप सभी का संसार भर में गर्मजोशी से जो यहाँ पर या यहाँ आचरण में रेडियो टेलीविजन इंटरनेट और जो कि संसार भर में विभिन्न स्टेक केंद्रों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा जहाँ पर सम्मेलन पहुँचा जा रहा है भाग ले रहे हैं का अभिवादन करते हैं हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता का जो इस उपस्थिति है का कृतज्ञ के अभिवादन करते हैं इस अधिवेशन के लिए संगीत की प्रस्तुति डेविस और वैभव काउंटेंस के युवा अविवाहित युवकों की गायन मंडली द्वारा पेश किया जाएगा सुनजा स्पेलिंग के निर्देशन के अंतर्गत बॉनी गुड लाइफ और लिंडा मार्केट ऑर्गन पर गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ प्रेज टू द लॉर्ड ऑलमाइटी गाकर करेगी प्रारंभिक प्रार्थना बहन जीन ए स्टीवंस प्राथमिक संस्था के जनरल अध्यक्षता में पहली सहकार द्वारा की दी जाएगी
Thank you. Our Father in heaven, humbly we come before you.
हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ, हम इस अधिवेशन में आपके पास आते हैं, आपके बच्चों के रूप में, हमारे प्रेम आपके लिए, हम आपका आभार प्रकट करते हैं आपके रिस्टोर गॉस्पल के लिए और सल्वेशन के लिए इस जीवन में. हम आपका आभार प्रकट करते हैं अपने भविष्यवक्ता थॉमस इस मॉन्सन के लिए, उनका समर्थन करते हैं अपने हृदय से और उनके सलाहकारों के लिए जो इस सम्मेलन में असिस्ट करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जैसे वो संगीत में और संदेशों में करते हैं, आप अपनी आत्मा भेजेगा. हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आत्मा से इसको आशीषित कीजिए कि हम उसमें भाग लिख सकें. इस पवित्र ईस्टर में हम आपका आत्मविभोर रखे आपके बलिदान को याद करते हैं, आपकी जीवन के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके हर सपोर्ट के लिए, आपका विश्वास और आपकी सच्चाई हमारे दिल को भरता है. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
अध्यक्ष डीटर एस ओकडॉर्फ प्रथम अध्यक्षता में दूसरे सलाहकार गिरजा के क्षेत्रीय स्तर के लिए अब समर्थन करने के वो प्रस्तुत करेंगे. फिर केविन आर जर्गेंसन प्रबंध निर्देशक गिरजे का परीक्षण विभाग का अर्थ वार्षिक विवरण पढ़ेंगे. उसके बाद ब्रुक पी हेल्स प्रथम अध्यक्षता के सचिव गिरजे के साल 2014 संख्या की विवरण प्रस्तुत करेंगे.
Brothers and sisters, it is proposed that
भाइयों बहनों, यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटीकर्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा के अध्यक्ष के रूप में हेनरी बेनरिंग का प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार के रूप में, डॉक्टर फ्रेडरिक उटोर को प्रथम सदस्यता में द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करते हैं. जो पक्ष में है इसे व्यक्त करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई हो तो प्रकट करें. आपका मत नोट कर लिया गया है. यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम बॉयड केनेथ पैकर का 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में और बॉयड के पैकर, एल टॉम पेरी, रशल एम नेल्सन, डेलन एच ओक्स, एम रसल बल्लार्ड, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेटनार, क्विंटन एल कुक, टी डॉट क्रिस्टोफरसन और नील एन एंडरसन. जो पक्ष में हैं इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई हो तो करें. आपका मत नोट कर लिया गया है. यह प्रस्ताव किया जाता है हम प्रथम अध्यक्षता में सलाहकारों और 12 प्रेरितों की परिवेशकता, दूरदर्शी पट्टीकर्ता का रूप में समर्थन करें. वे जो सब पक्ष में हैं किसे प्रकट करें, विरोध में यदि कोई है तो उसे प्रकट करें. आपका वोट नोट कर लिया गया है. यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम लिम्गित क्षेत्रीय क्षेत्र के रूप में 1 मई 2015 से प्रभावित इनको मुक्त किया जाएगा. हुआन सी आलवा, फिलिप के बेसी, रेन जय कैबरा, रेनांटो कैलापेटी, पॉल डी एम क्रिस्टरसन, सैमुअल डब्ल्यू क्लार्क, रोजेरियो जी आर क्रूज, जॉर्ज डी डॉनसन, इनी बी ए कॉकिंग, क्रिश्चियन एच फ्रिंग्रेल, क्रेग जी फिशर, जेरी एल गार्न्स, एम केथ गिडियंस, एलन डी हाइनी, जुई चैंग योंग, जॉर्ज एम कीली वॉन जी केच कस्टुमसी कुसमे जर्बन लोबरियल जे क्रिस्टोफर लैंस सिंह गुस्टाफ लोपेज डिमिट्री वी मैकेंस्को पीटर मोयर्स जी जैक्सन मिका बेटा मुक वकेला हुगो मोंटोया वैलेंटाइन एफ नंजे ही कैन ओ जेफरी ई ऑल्सन आर इंजिगर ऑल्सन नॉर्बर्ट के ऑन लियो रॉबर्ट एंड पार्कर नेथानियल आर पैन सीजर एर पर्स जूनियर मिकेल जे रेल एडसन जी रबेरो ब्रैड के राइजमेनी वॉल्टर सी सेल्डन मोजार्ट सी सोरेस कार्लोस सोलिस नॉलैंड सोएजा वेन पी स्टैनफिल टी मरामा तराटी कार्जु ताशिरो रुबेन डी टोरेस ओमेर वेलालाबोस जैक डी वार्ड एलन जे वेब जेराडो जे विलहम जिम ऑल राइट जो इनकी शानदार सेवा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारा साथ शामिल होना चाहते हैं कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम डेविड हेलबेक एल एम बैरी एम गिब्सन और रेनल डी रीड को हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करके युवक जनरल अध्यक्षता की सेवा से मुक्त करते हैं। वैसे ही हम सभी युवक जनरल बोर्ड के सदस्यों का भी सेवा से मुक्त करते हैं। इस समय हम बहन जी ए एस स्टीवनसन प्राथमिक जनरल अध्यक्षता की पहली सलाहकार और बहन शेरिल ए एस्पेलन प्रथम सार्वजनिक सत्ता में दूसरी क्लर्क को सेवा मुक्त करते हैं और वे जो हमारे साथ मिलकर इन भाइयों और बहनों को उल्लेखनीय सेवा और भक्ति का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कृपया इसे व्यक्त करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम 70 की प्रथम परिषद के नए सदस्यों का समर्थन करें। किम बी क्लार्क वॉन जे कीट्स एलन डी हाइनी हुगो मोंटोया और वेल पी स्टैनफिल वो जो स्फीयर में अच्छे हैं कृपया प्रकट करें। यदि कोई विरोध हो इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है हम निम्नलिखित न्यू नए क्षेत्रीय सत्रों के रूप में समर्थन करें। नेंसर एडिला जोस एम बेटला लॉरेंस पी ब्लंक ब्रैडफोर्ड सी ब्राउन एम ए ब्रैग सर्जियो लुइस कार्बिनो अर्मेंडो कैरियन एस मार्क क्ले जूनियर जे डोमिनिको डिके ओसाल वोल्डो आर डाइस माइकल एम डुडले मार्क पी डोरम जेम्स ई इवानसन पार्कोल्स ए फोर्चोंटो पैट्रिसियो एम गिफोरा डैनियल पी हॉल टोरो हायशी पॉल ई हैंसिस जे के चुकनवेक मेका इक्वे सियोन हु हु मिंग शू कॉन जॉनी एल लियोटा कार्लो एम लेजानो लसानो जोएल मार्टिनीज जे वॉन मैकार्थर कायल एस मैके हिलमैन मोंटेजो फेबियो मोस्कोसो Michael R. Murray, Norman Newmuir, S. Mark Palmer, Fernandia P. Pageant, Jarius C. Perez, Stephen M. Patterson, Wolfgang Pils, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Evaldo B. Pinto Jr., Evan C. Cruz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Senjos, Rulono F. Stacy, David Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Seiji Tokuzu Zawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Weller, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary Wilde, Robert K. William. वे जो इसके पक्ष में हैं कृपया इसे प्रकट करें, जो विरोध करते हैं यदि कोई हो तो प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम बहन शेरिल ए. इप्सल प्राथमिक सलाहकार में प्रत्येक सलाहकार और बहन मैरिल ए. डोरम प्राथमिक सलाहकार में दूसरी सलाहकार के समर्थन करें। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि हम भाई स्टीफन ओ. ओवन को युवक जनरल अध्यक्षता, डॉगलस डी. होम्स को पथलम सलाहकार, मोंटे जोसेफ ब्रो दूसरे सलाहकार के रूप में समर्थन करें। जो पक्ष में है इसे प्रकट करें, कोई विरोध हो उसे प्कट करें। अध्यक्ष थॉमस मैनसन चुनाव का नोट कर लिया गया है। भाइयों और बहनों, अब अगर आपने कोई अपोज किया तो उसको नोट कर लिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके समर्थन के लिए हम निरंतर विश्वास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जितने भी नए जनरल अथॉरिटी चुने गए हैं हमारे साथ आके ऊपर में बैठे, ये वो आ रहे हैं।
As announced,
जैसे कि घोषणा की गई थी, अब भाई केविन जर्गेंसन लेखा प्रशिक्षण विवरण पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रुक बी. हेल्स 2014 की सांख्यिकी विवरण पढ़ेंगे। धन्यवाद भाइयों और बहनों।
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren.
अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता से। प्रिय भाइयों, सिद्धार्थ और अनुबंध भाग 120 में निर्देश द्वारा प्रकटीकरण दिया गया है। दशमांश के प्रबंध के परिषद से प्रथम अध्यक्षता का बनाया, बाहर प्रेरित के परिषद से और संचालन बिशपरी से गिरजा कोष के खर्च का अधिकारिता बनाया गया है। गिरजाकर बजट नीतियां और कार्य की अनुमति अनुसार के साथ कोष वास्तविकता में देता है। गिरजा ऑडिटिंग विभाग, जिसको प्रमाणित व्यवसायी व्यक्तियों से बनाया गया और गिरजे के अन्य सभी विभागों से स्वतंत्र है, उद्देश्य के लिए ठोस कारण देकर राशि प्राप्त के तहत खर्चे किए गए और गिरजा की संपत्ति सुरक्षा हेतु काम करने का परीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। ऑडिट कार्य पर आधारित गिरजा ऑडिटिंग विभाग का यह विचार है कि सभी सामग्री के आदर में इस सहयोग प्राप्ति मिलते रहे, खर्चे किए जाए और गिरजा की संपत्ति साल 2014 के लिए और गिरजा बजट अनुमति अनुसार प्रशासन नीतियों और हिसाब के लिए लेखांकित किया गया है। गिरजा अभ्यास का अनुसरण कर उसके सदस्यों का बजट के भीतर रहना, कर्जे से बचना की जरूरत के समय के लिए बचत करना सिखाता है।
First Presidency has issued the following statistical report concerning the growth and status of the church as of December 31st, 2014. The total number of stakes at the end of the year was 3,114, with
31,14,406 के साथ मिशन 561 जिले और 29,621 वार्डो और शाखाओं. संपूर्ण गिरजाघर की सदस्यता 1,53,72,337 थी. नए बच्चों का के लेखा की संख्या 2014 के दौरान 1,16,409 में जोड़ी गई. वर्ष के दौरान 2,96,803 के साथ परिवर्तितों ने बपतिस्मा लिया था. तीन मंदिरों को 2014 में समर्पित किया गया, गिल्बर्ट एरिजोना फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा और फिनिक्स एरिजोना मंदिरों. 2014 में मंदिर का पुनः स्थापित किया गया था, ऑगडन टेंपल का. वर्ष के अंत तक 144 मंदिर संचालित हैं.
The choir will now favor us with.
गायक मंडली गाएगी. I stand all amazed. संगीत के बाद हम एल्डर डेविड ए बेडनार और टी टोट क्रिस्टोफरसन 12 प्रेरित के परिषद से सुनेंगे.
I remember vividly an experience I had as a small boy.
मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद है जो मुझे छोटे लड़के के रूप में हुआ था। मैं अपने साथियों के साथ खेलते हुए मुझसे गलती से घर के सामने की दुकान का शीशा टूट गया। जैसे ही कांच टूटा और सुरक्षा अलार्म बजा, मैं डर के मारे थरथर कांपने लगा। मुझे लगा कि अब मेरा सारा जीवन जेल में कट जाएगा। मेरे माता पिता ने मुझे पलंग के नीचे से बाहर निकाला और दुकान के मालिक के साथ मेरी गलती का समाधान करने में मदद की। सौभाग्य से मैं जेल जाने से बाल बाल बच गया। जो डर मैंने उस दिन महसूस किया था वह बहुत ही भयानक और वास्तव था। अपने व्यक्तिगत बीमारी के बारे में जानकर परिवार के किसी सदस्य को परेशानी या खतरे पाकर या संसार की चिंतित करने वाली घटनाओं को देखते हुए निसंदेह अपने भी इससे अधिक भयभीत करने वाली अनुभूतियों का महसूस किया होगा। ऐसे मौके में खतरे की आशंका अनिश्चितता के कारण या दर्द या अनुभव के द्वारा डर की कष्टदायक भावना पैदा होती है जो कि प्रत्यक्ष कभी कभी अचानक और संभवतः नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अंतहीन आपराधिक हिंसा सूखा युद्ध भ्रष्टाचार आतंकवाद गिरते नैतिक मूल्य बीमारी और प्रकृति की विनाशकारी ताकतें डर और चिंता पैदा कर सकती हैं। अवश्य ही हम सब समय में रहकर किसी घोषणा प्रभु ने की थी और उस दिन संपूर्ण पृथ्वी में हलचल होगी और लोगों के हृदय कांप उठेंगे। मेरा उद्देश्य यह व्याख्या करना है कैसे सही ज्ञान और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा डर को दूर भगाया जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हम सभी की आशीषित करेगी जब हम मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हैं। अदन की वाटिका में प्रतिबंध फल खाने के बाद आदम और हवा ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर स्वयं को छिपा लिया। परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई और पूछा तुम कहाँ हो। आदम ने उत्तर दिया मैंने उसकी आवाज को सुना मैं भयभीत हो गया। ध्यान दीजिए जाना चाहिए कि पतन के प्रथम भावनाओं में से था आदम और हवा द्वारा डर का अनुभव किया जाना। ये प्रभावशाली अनुभूति हमारे नाश्वर जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मॉर्मन की बुक का एक उदाहरण डर को दूर भगाना और शांति प्राप्त करने के लिए मुझे प्रभु की ज्ञान की शक्ति को समझाता है। जब हम अत्यधिक कठिनाई को सामना करते हैं हेलम प्रदेश में एल्मा के लोग आगे बढ़ रही लमनाई की सेना से घबराए हुए थे लेकिन एल्मा आगे बढ़ा और उसके बीच में खड़ा हो गया और उन्हें हिम्मत दी कि वे भयभीत ना हो बल्कि वे प्रभु अपने परमेश्वर को याद करें और उन्हें भगाएं बचाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने डर को दूर भगाया था। ध्यान दे एल्मा ने लोगों के डर को दूर नहीं किया था। असल में एल्मा ने अविश्वासियों से प्रभु और उस मुक्ति को स्मरण करने की सलाह दी थी जो कि केवल वही दे सकता था और उद्धारकर्ता की सुरक्षा देने वाली सतर्क देखरेख ने लोगों को उनके स्वयं के डरों को दूर करने के योग्य बनाया था। प्रभु के विषय में सही ज्ञान और उसके विश्वास हमें अपने डर को दूर करने में सामर्थ कर बनाता है क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत केवल यीशु मसीह है। उसने घोषणा की थी मेरे विषय में सीखो और मेरे वचनों को सुनो मेरी आत्मा को विनम्रता में चलो और तुम मुझ में शांति पाओगे। स्वामी ने यह भी समझाया था जो धार्मिकता के कार्यों को करता है वे अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा। इस संसार में शांति आने वाले संसार में अनंत जीवन मसीह में भरोसा और आत्मविश्वास उसकी योग्यताओं दया अनुग्रह पर स्वैच्छिक निर्भरता और पुनरुत्थान में उसके प्राश्रित और अनंत जीवन के द्वारा आशा की ओर ले जाती है। ऐसा विश्वास और आशा हमारे जीवनों में अंतरात्मा की मधुर शांति को निमंत्रण देता है जिससे हम सब पाना चाहते हैं। प्राश्रित की शक्ति पश्चाताप की संभव करती है और पाप द्वारा उत्पन्न हुई निराशा को दूर करती है। यह हमें उस तरह से अच्छा देखने अच्छा करने अच्छा बनने का बल भी देती है जिसे हम अपनी सीमित नाश्वर क्षमता से कभी समझ या प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में निष्ठावान शिष्टता की महान आशीषों में से एक है परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। शांति जो मसीह देता है वे हमें नाश्वर जीवन को अनंतकाल के बहुमत दृष्टिकोण में देखने की योग्य बनाती और आत्मिक स्थिरता देती है। जो हमें निरंतर हमारे स्वर्गीय लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है। इस प्रकार हम अपने डरों को दूर करने के लिए आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत हमारे जीवन के सभी अवस्थाओं में लक्ष्य और दिशा प्राप्त करता है। उसकी रीति और अनुबंध अच्छे और बुरे दोनों समय में मजबूती और दिलासा देते हैं, और उनके प्रोहित्य का अधिकार आश्वासन देता है कि जो बातें अति आवश्यक हैं, वे समय और अनंत काल दोनों में जारी रह सकती हैं। लेकिन क्या हम अपने वर्तमान संसार में उन डरों को दूर कर सकते हैं जो इतनी आसानी से और बार बार हमें घेर लेते हैं? इस प्रश्न को उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है। तीन मूल सिद्धांत इस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए मुख्य हैं। एक, मसीह की तरफ देखना। दूसरा, मसीह की नींव पर निर्माण करना। तीसरा, मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहना। पहला, मसीह की तरफ देखना। आलमा जो सलाह अपने बेटे हिलमन को देता है आज हूबहू हम में से प्रत्येक पर लागू होती है। हाँ, ध्यान दो कि तुम परमेश्वर की तरफ देखो और जियो। हमें हर समय सभी स्थानों में उद्धारकर्ता को देखना चाहिए और हमारा ध्यान दृढ़ता से उस पर लगा रहना चाहिए। विचार करें कैसे प्रभु के प्रेरित एक जहाज में थे जो बीच समुद्र में डामाडोल हो रहा था। यीशु पानी पर चलकर उनके पास आया, लेकिन उन्हें उसे ना पहचानते हुए वे भयभीत होकर चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस पानी पर यीशु की ओर चलने लगा, लेकिन जब उसने देखा, हवा को देखा, वह भयभीत हो गया, डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मैं पतरस द्वारा उत्साह से और तुरंत उद्धारकर्ता के निमंत्रण को जवाब देने की कल्पना करता हूँ। उसकी आंखें प्रभु पर लगी थीं। वह जहाज से बाहर निकला और चमत्कारी ढंग से पानी पर चला। केवल जब उसकी दृष्टि हवा और लहरों द्वारा भटक गई, वह भयभीत हुआ और डूबने लगा। जब हम प्रभु के निर्देशन का पालन करते हैं तो हम अपने डरों पर विजय पाने और अपने विश्वास को करने के लिए आशीषित होते हैं। हर समय मेरा मन मनन करें, संदेह ना करें, भयभीत ना हो। दूसरा, मसीह की नींव पर निर्माण करना। हिलमन ने अपने पुत्रों नेफी और लेही को सलाह दी थी, याद रखो कि ये मुक्तिदाता की चट्टान पर है जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिस पर तुम अपनी नींव रख सको, ताकि जब शैतान अपनी प्रबल हवाओं को फेंकेगा, हाँ, बवंडर में अपनी बिजली चमकाएगा, हाँ, जब उसके सारे ओले बरसेंगे और उसके प्रबल तूफान तुम्हें थपेड़े मारेंगे, तुम्हें दुखों की घाटी और अंतहीन श्राप के खींचने के लिए उसके पास बल नहीं होगा, क्योंकि जिस चट्टान पर तुम्हारा निर्माण हुआ है वह मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जिस पर यदि मनुष्यों का निर्माण हो तो वे गिर नहीं सकते। रीतियां और अनुबंध में मूलभूत तत्व हैं जिसके प्रयोग हम मसीह और उसके प्रायश्चित पर अपने जीवनों का निर्माण करने के लिए करते हैं। हम इस सुरक्षित रूप से मसीह के साथ जुड़ते रहते हैं जब हम योग्यता से रीति का प्राप्त करते और अनुबंध बनाते, विश्वसनीय रूप से उन पवित्र जिम्मेदारियों को स्मरण करते और जिस दायित्व को अपने स्वीकार किया है उन्हें पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, और ये बंधक परिस्थितियों में हमारे जीवनों की आत्मिक शक्ति और स्थिरता स्रोत है। हम अपने डरों को दूर करने के लिए आशीषित हो सकते हैं जब हम अपनी इच्छाओं और कार्यों को हमारी रीतियों और अनुबंधों के द्वारा आतंकवाद के दृढ़ नींव पर मजबूती से स्थापित करते हैं। तीसरा, मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहना। नेफी ने घोषणा किया, इसलिए तुम मसीह में दृढ़ता से विश्वास करते हुए आशा की परिपूर्ण चमक और परमेश्वर और सभी मनुष्य से प्रेम करते हुए हमेशा आगे बढ़ते चलो। इसलिए यदि तुम मसीह की वाणी का प्याला पीते हुए और अंत तक एक धीरज धरते हुए आगे बढ़ते रहोगे, सुनो पिता इस प्रकार कहता है, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। इस आयत में बताई गई अनुशासित स्थितियां आत्मिक समझ और दृष्टिकोण, दृढ़ता, धैर्य और परमेश्वर की अनुग्रह का परिणाम है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में और पर विश्वास करने, हमारे जीवनों में उसकी इच्छा और समय के प्रति विनम्रता से समर्पित होने और दीनता से सभी कामों में उसके प्रभाव को स्वीकार करने से परमेश्वर के राज्य के संबंध में सच्चाइयां उत्पन्न होती हैं, जिससे शांति का बढ़ावा मिलता है, जो आनंद और अनंत जीवन लाती है। जब कभी हम कठिनाइयों और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करते हैं, हम प्रसन्नता पूर्वक अटिंग रहकर शांति के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सकते हैं। जब हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवित सुसमाचार को सीखने और जीने और दृढ़ता से अनुबंध का पालन करने से मिलती है, तो हम अपने डरों को दूर करके करने के लिए आशीषित हो सकते हैं। अनंत डरों से लेकिन इस हम अक्सर प्रस्तुत करते हैं, जिसकी धर्मशास्त्र ईश्वरी डर के रूप में व्याख्या करता है, या प्रभु का डर, संसारिक डर से भिन्न, जबकि भिन्न चैनी और चिंता। इसलिए ईश्वरीय डर शांति, आश्वासन, आत्मविश्वास का स्रोत है। लेकिन कैसे डर से संबंधित कुछ भी लाभदायक या आत्मिक रूप से मददगार हो सकता है? धार्मिकता डर जिसकी व्याख्या करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रद्धा, आदर और डर की गहन अनुभूति, उसकी आज्ञाओं का अनुपालन और अंतिम न्याय और उसके हाथ में न्याय के प्रत्यक्ष शामिल है। इस प्रकार ईश्वरीय डर प्रभु यीशु मसीह के दिव्य प्रकृति और मिशन के सही ज्ञान, उसकी इच्छा के सामने अपनी इच्छा समर्पित करना और ये जानने में उत्पन्न होता है कि प्रत्येक पुरुष और महिला अपने स्वयं के पापों के लिए न्याय के दिन जिम्मेदार होंगे। जैसे कि धर्मशास्त्र सिखाते हैं, ईश्वरीय डर बुद्धि का मूल है, शिक्षा, दृढ़ भरोसा जीवन का सूत्र है। ध्यान दें, ईश्वरीय डर आत्मिक न्याय की समझ और व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छाओं, विचारों, शब्दों, कार्यों के प्रति जिम्मेदारी से अटूट रूप से जुड़ा है। प्रभु का डर न्याय किसी जाने के लिए उसके सम्मुख उपस्थित होने की अनुचित आशंका नहीं है। मैं नहीं समझ मानता कि हम उसके बिल्कुल ही भयभीत हों। असल में यह एक विचार है कि हम अपने सभी युक्ति संगत ढोंग और आत्म पातरण के परिपूर्ण ज्ञान के साथ उसकी उपस्थिति में अपने स्वयं के विषय में सच्चाइयों का सम्मान उसी रूप से करेंगे जैसे कि वे वास्तव में है। अतः हम कोई बहाना नहीं बना सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी रह रहा है या रहेगा, परमेश्वर के कटघरे के सामने अपने कामों के अनुसार न्याय पाने के लिए, चाहे वे भले रहे हो या बुरे, लाया जाएगा। यदि हमारी इच्छाएं धार्मिक और हमारे कार्य अच्छे रहे होंगे, तो परमेश्वर के कटघरे सामने खड़ा होना आनंददायक होगा और अंतिम दिन हमें धार्मिकता का पुरस्कार मिलेगा। इसके विपरीत, यदि हमारी इच्छाएं बुरी और हमारे कार्य भ्रष्ट रहे होंगे, तो परमेश्वर का कटघरा सामने खड़ा होना कष्टदायक होगा। हमें अपने परमेश्वर की तरफ देखने का साहस नहीं होगा। हमें प्रशंसा होगी यदि ये हम पर्वतों और चट्टानों की आज्ञा दे सकें कि परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने के लिए हमें गिर जाएं। अंतिम दिनों में हमें बुराई का ही पुरस्कार मिलेगा। जैसा समुदेशक में बताया गया है, परमेश्वर का डर मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ईश्वरीय डर दूर भागता है, ये बार बार सताने वाली उन चिंताओं को दूर भगाता है कि हम कभी भी आत्मिक रूप से भले नहीं हो सकते और कभी भी प्रभु की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते। असल में हम पूरी तरह से अपनी स्वयं की क्षमता और कार्य पर भरोसा करते हुए प्राप्त भले या उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते। अकेले हमारे कार्य इच्छाएं हम नहीं बच सकते। हम जो कर सकते हैं उन सबको करने का पश्चात केवल उद्धारकर्ता के असीमित अनंत बलिदान के जरिए उपलब्ध द्वारा और अनुग्रह के द्वारा परिपूर्ण बनाया जाता है। निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि मसीह के प्राश्चित द्वारा सारी मानव जाति सुसमाचार की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता और रीतियों के द्वारा बचाई जा सकती है। ईश्वरीय डर उससे प्रेम और उससे भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर के पूर्ण रूप से डर रखते हैं तो हम उसे अधिक परिपूर्ण रूप से प्रेम करते हैं और परिपूर्ण प्रेम सारा डर दूर कर देता है। मैं वादा करता हूँ ईश्वरीय डर का तेज प्रकाश संसारिक डरों की अंधकारमय काली परछाइयों को दूर भगाएगा। जब हम उद्धारकर्ता की ओर देखें, उस पर अपना निर्माण करते और उसकी अनुबंध में पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मैं प्रभु से प्रेम और उसका आदर करता हूँ। उसकी शक्ति और शांति सच्ची है। वह हमारा मुक्तिदाता है। मैं गवाही देता हूँ वह जीवित है और उसके कारण हमारा मन घबराए या ना डरे और हम अपने डरों को दूर करने के लिए आशीषित होंगे। मैं ये गवाही यीशु मसीह के पवित्र नाम से देता हूँ। आमीन।
Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England, stand the statues.
England, London में मशहूर Westminster Abbey के विशाल west door के ऊपर 20वीं शताब्दी में 10 ईसाई शहीदों की मूर्तियां हैं। इनमें Dietrich Bonhoeffer 1906 में जन्मे एक विद्वान जर्मन धर्मशास्त्री की मूर्ति भी शामिल है। Bonhoeffer नाजी तानाशाही और यहूदियों और अन्य पर इसके व्यवहार का स्पष्टवादी आलोचक बन गया था। उसके सक्रिय विरोध के कारण उसके कारावास में डाल दिया गया था और उसे अंततः नजरबंद शिविर में फांसी दे दी गई। Bonhoeffer ने बहुत सी बातें लिखी और उसकी जानी मानी कृतियां वे पत्र हैं जिन्हें सहानुभूति रखने वाले पहरेदारों ने जेल से बाहर पहुंचाने में उसकी मदद की थी। बाद में ये लेटर्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रिजन के रूप में प्रकाशित हुए थे। उन पत्रों में से एक उसने अपनी भतीजी को उसके विवाह से पहले लिखा था, जिसमें ये उत्तम विचार शामिल थे, विवाह एक दूसरे से मात्र प्रेम करने से बहुत अधिक है। अपने प्रेम में आप दोनों संसार में केवल स्वयं को देखते हो, लेकिन विवाह में आप दोनों पीढ़ियों की जंजीर के बीच एक कड़ी हो जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लाता है और ले जाता है और अपने राज्य में वापस शामिल कर लेता है। अपने प्रेम में आप केवल अपने सुखद संसार को देखते हैं, लेकिन विवाह में आपको संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी के लिए एक नियुक्ति दी जाती है। आपका प्रेम आपकी निजी संपत्ति है। विवाह निजी होने से कुछ अधिक है। यह एक प्रतिष्ठा है और एक पद है। यह बिल्कुल एक मुकुट के समान है और केवल शासन करने की इच्छा मात्र नहीं है, यह एक राजा को दर्शाता है। ऐसा ही विवाह है और ये केवल एक दूसरे के लिए प्रेम मात्र नहीं है जो आप दोनों को परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि से एक साथ जोड़े रखता है। प्रेम आप करते हैं, लेकिन विवाह स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से होता है। किस तरह से एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी की नियुक्ति से श्रेष्ठ है और किस प्रकार ये स्वर्ग से परमेश्वर की ओर आता है, इसे समझने के लिए हमें आरंभ में जाना होगा। भविष्यवक्ता ने बताया है कि पहले आत्माओं के रूप में हमारा अस्तित्व था और हमें परमेश्वर द्वारा आकार दिया गया, यानी आत्मिक शरीर। इस प्रकार हम उसकी आत्मिक संतान स्वर्गीय माता पिता के बेटे और बेटियां बन गए। इस पृथ्वी पर पूर्व आत्मिक अस्तित्व में एक समय आया जब विकास करने की उसकी इच्छा कि हमें उसके समान बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हमारे स्वर्गीय पिता ने एक योग्य बनाने वाली योजना तैयार की। धर्म शास्त्रों में इसे कई नाम दिए गए, उद्धार की योजना, सुख की महान योजना और मुक्ति की योजना। इस योजना के सैद्धांतिक उद्देश्यों को इब्राहिम को इन वचनों में समझाया गया था और उनके बीच ये खड़ा हुआ जो परमेश्वर के समान था और उनसे कहा जो उसके साथ थे, हम नीचे जाएंगे क्योंकि वहां पर स्थान है और हम उन वस्तुओं को ले जाएंगे और हम पृथ्वी की रचना करेंगे जहां ये आत्माएं निवास कर सकें और यहां हम उन्हें साबित करने का मौका देंगे कि क्या वे उन सब कामों को करेंगे जो प्रभु उनका परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है और वे जो अपनी पहली अवस्था को कायम रखते हैं उन्हें और दिया जाएगा और वे जो अपनी दूसरी अवस्था को कायम रखते हैं उनके सिरों पर महिमा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। हमारे स्वर्गीय पिता को धन्यवाद, हम पहले ही आत्मिक अवस्था में आ चुके थे, अब वह हमें परिपूर्ण या संपूर्ण होने के मार्ग पर अवसर दे रहा था। भौतिक अवस्था का जोड़ा जाना परमेश्वर के समान परिपूर्ण या महिमापूर्ण बनने के लिए जरूरी है। यानी जब परमेश्वर के साथ पृथ्वी पूर्व आत्मिक जीवन में थे, हमने उसकी योजना में भाग लेने के लिए सहमति दी थी, या अन्य शब्दों में हमने अपनी पहली अवस्था को कायम रखा। हमें और दिया गया जब हम भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर निवास करने आए थे जिसे उसने हमारे लिए बनाया था। यदि तब अपने नश्वर अनुभव के मार्ग में हम उन सब कामों को करने का चुनाव करते हैं जो प्रभु हमारा परमेश्वर हमें आज्ञा देगा, हम अपनी पूरी अवस्था को कायम रखते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने चुनावों द्वारा परमेश्वर और स्वयं को प्रदर्शित करेंगे कि हम उसकी उपस्थिति से दूर और भौतिक शरीर में इसकी सारी शक्तियों, इच्छाओं और लालसाओं के होते हुए अपनी निष्ठा और क्षमता से उसके स्वर्गीय नियमों का पालन करेंगे। क्या हम अपने भौतिक शरीरों पर लगाम लगा सकते थे ताकि ये आत्मा का मालिक बनने के स्थान पर इसके अधीन हो जाएं? क्या समय और अनंतता में हमें जीवन की रचना करने की शक्ति सहित ईश्वरीय शक्तियां सौंपी जा सकती हैं? क्या हम व्यक्तिगत रूप से बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो ऐसा कर सकेंगे उनके सिरों पर महिमा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। उस महिमा का अति महत्वपूर्ण पहलू है अमर और महिमापूर्ण शरीर में पुनः जीवित होना। कोई आश्चर्य नहीं इस शानदार संभावनाओं और प्रतिज्ञाओं पर हम खुशी से चिल्लाए थे। इस दिव्य योजना में सफल होने के लिए चार बातें आवश्यक रूप से बताई गई। पहली थी हमारे निवास स्थान के लिए पृथ्वी की रचना। सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन कुछ भी हो, हम जानते हैं कि ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुआ था, लेकिन इसे पिता परमेश्वर के निर्देश पर यीशु मसीह द्वारा पूरा किया गया था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। दूसरी है नश्वरता की अवस्था। आदम और हव्वा ने उन सब की ओर से कार्य किया था जिन्होंने पिता के सुख की महान योजना में भाग लेना चुना था। उनके पतन का कारण हमारे शारीरिक जन्म और परमेश्वर की निकटता के बाहर नश्वर अनुभव करने और समझने के लिए आवश्यक परिस्थितियां रची गईं। पतन के साथ अच्छे और बुरे और परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति को चुनने की जागरूकता आई। अंततः पतन से शारीरिक मृत्यु मिली जो नश्वरता में हमारे समय को अस्थायी करने के लिए जरूरी थी ताकि हम अपने पापों में हमेशा जीवित न रह सकें। तीसरी है पतन से मुक्ति। हमारे पिता की योजना हमें मृत्यु की भूमिका देखते हैं, लेकिन अंत में शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की मृत्यु पर किसी तरह से विजय प्राप्त किए बिना ये योजना सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार एक मुक्तिदाता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह ने आदम और हव्वा के उल्लंघनों का प्रायश्चित करने के लिए दुख सहा और मारा गया ताकि सभी को पुनरुत्थान और अमृत मिले। और क्योंकि हम में से कोई भी पूर्ण और निरंतर सुसमाचार की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी नहीं रह पाएगा, उसका प्रायश्चित हमें अपने पापों से मुक्ति भी दिला सकता है यदि हम पश्चाताप करेंगे। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित अनुग्रह के कारण पापों की क्षमा और आत्मा की पवित्रता उपलब्ध होती है। हम आत्मिक रूप से पुनर्जन्म ले सकते हैं और परमेश्वर में जा सकते हैं। हमारी आत्मिक मृत्यु परमेश्वर के अलगाव और दूर हो जाएगा। चौथा है और अंतिम है हमारा शारीरिक जन्म और उसके पश्चात परमेश्वर के राज में आत्मिक पुनर्जन्म, क्योंकि उसके कार्य की सफलता हेतु हमें उसके समान बनाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया कि पुरुष और स्त्री विवाह करें और जन्मों को बच्चों को जन्म दें और इस प्रकार परमेश्वर के साथ भागीदार बन जाएं। भौतिक शरीर नश्वरता की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उसके साथ अनंत महिमा के लिए जरूरी है। उसने ये भी नियुक्त किया कि माता पिता परिवारों की स्थापित करें और प्रकाश और सच्चाई में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए मसीह की आज्ञा रखने के लिए उनका मार्गदर्शन करें। पिता ने हमें आज्ञा दी है अपने बच्चों को स्वतंत्रता से इन बात को सिखाओ कि जिस प्रकार हमने जल और लहू की आत्मा द्वारा संसार में जन्म लिया, हम फिर से स्वर्ग के राज्य में भी जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेंगे और यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध होंगे ताकि सभी पाप से शुद्ध किए जाएं और इस प्रकार संसार में और आने वाले संसार में अमृत की महिमा सहित अनंत जीवन में शब्दों का आनंद लें। ये जानकर कि हमने क्यों हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति को छोड़ा और उसके पास वापस जाने और उसके समान बनने के लिए क्या करना है, ये बिल्कुल अस्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर हमारे समय के संबंध में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शारीरिक जन्म और आत्मिक पुनः जन्म दोनों अनंत जीवन के लिए जरूरी हैं। ये डायट्रिक बोनिफर के शब्दों विवाह का पद संसार और मानव जाति के प्रति जिम्मेदारी की नियुक्ति कि यहाँ दिव्य संस्था विवाह स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से होता है के उपयोग को पूरा करता है। ये दोनों पीढ़ियों के बीच में जंजीर की एक कड़ी है यहाँ और इसके बाद स्वर्ग के संगठन में एक परिवार जिसका निर्माण पुरुष और स्त्री के विवाह पर होता है परमेश्वर की योजना को सफल होने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ऐसा स्थान जहाँ बच्चे शुद्धता और निष्कपटता से परमेश्वर की ओर से जन्म लेते हैं और ऐसा वातावरण जहाँ उन्हें सफल नश्वर जीवन और आने वाले संसार में अनंत जीवन के लिए सिखाया और तैयार किया जाता है। इस प्रकार के विवाहों पर निर्मित परिवार समाज के फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए समाज और राष्ट्र सामान्य रूप से विवाह और परिवार की विशेष रूप से प्रोत्साहन और सुरक्षा देते हैं। समाज शास्त्र द्वारा विवाहित पुरुष और स्त्री द्वारा नेतृत्व विवाह और परिवारों का पक्ष लेना उत्साहवर्धक हो सकता है और इस प्रकार हम चेतावनी देते हैं कि परिवार से अलगाव व्यक्तियों समुदाय और राष्ट्रों पर संकट लाएगा जैसा प्राचीन और आधुनिक भविष्य वक्ताओं द्वारा बताया गया है। लेकिन विवाह और परिवार की भूमिका का हमारा दावा समाज शास्त्र पर नहीं बल्कि इस सच्चाई पर आधारित है कि ये परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उसने ही आरंभ में आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में रचा था, एक नर और एक नारी, और उन्हें एक शरीर बनने और वृद्ध करने और पृथ्वी को भरने के लिए पति और पत्नी के रूप में जोड़ा था। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिव्य स्वरूप है, लेकिन वैवाहिक बंधन में पुरुष और स्त्री के संबंध में ही हम शायद परमेश्वर के स्वरूप में संपूर्ण रूप से नर और नारी के रूप में बनाए जाते हैं। न हम न ही कोई अन्य नश्वर व्यक्ति विवाह की इस दिव्य विधि को बदल सकता है। इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। इस प्रकार का विवाह वास्तव में स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से होता है और सुख की योजना का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना पतन और प्रायश्चित है। नश्वरता पूर्व संसार में शैतान ने परमेश्वर और उसकी योजना का विरोध किया था और उसका विरोध तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। ये विवाह को रोकने और परिवारों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है और जहाँ विवाह और परिवारों का निर्माण हो जाता है वो इन्हें कष्ट करने का भरपूर प्रयास करता है। वो कई प्रकार के अनैतिक विचारों और कार्यों द्वारा विवाह के प्रसंग में हिंसक रूप से अलगाव पैदा कर मानव की प्रजनन शक्ति की पवित्रता पर आक्रमण करता है। पुरुषों और स्त्रियों को ये मानने के लिए मजबूर करता है कि विवाह और परिवार की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज या इनका त्याग किया जा सकता है या करियर अन्य सफलताओं और आत्म संतुष्टि की चाहत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समक्ष इनका महत्व कम है। निश्चित रूप से शैतान खुश होता है जब माता पिता अपने बच्चों को मसीह में विश्वास करने की शिक्षा और प्रशिक्षण देने परिवर्तन प्राप्त करने और आत्मिक रूप से फिर जन्म लेने में लापरवाह रहते हैं। भाई और बहनों, बहुत सी बातें अच्छी हैं, बहुत सी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जरूरी भी हैं। विवाह और परिवार के संबंध में मूलभूत सच्चाइयों की घोषणा करना उनके बलिदानों और सफलताओं को अनदेखा या कम आंकना नहीं है जिनकी आदर्श परिस्थितियां वर्तमान में नहीं हैं। आप में से कुछ को विवाह की आशीष नहीं दी गई है जिनमें योग्य साथी का न मिलना, समलैंगिक आकर्षण, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या मात्र असफल होने का भय कम से कुछ क्षण के लिए विश्वास को धूमिल कर देता है या आपका विवाह होता है लेकिन ये विवाह टूट जाता है। और आपको वो सब अकेले करना पड़ता है जिसे दो जनों को मिलकर करना भी कठिन लगता है। आप में से कुछ जिनका विवाह हुआ है लेकिन अत्यधिक चाहत और प्रार्थनाओं के बावजूद बच्चे नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक के पास उपहार है, प्रत्येक के पास हुनर है, प्रत्येक दिव्य योजना के विकास में हर पीढ़ी में योगदान दे सकती है। बहुत जो अच्छा है, बहुत जो जरूरी है, कभी कभी जो अभी के लिए आवश्यक है, ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है जो आदर्श नहीं है। आप में से बहुत से अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं और आप जो कि नश्वरता में कठोरतम कष्ट उठाते हुए उसके बच्चों के उत्कर्ष के लिए परमेश्वर की योजना में बचाव में सामने आते हैं, हम सब आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आत्मविश्वास के साथ हम प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित पूर्वानुमानित और अंत में उन सभी की हानि और नुकसान की भरपाई करके जो उसकी ओर मुड़ते हैं, जो पिता के पास है वो सब उसके बच्चों का है। और उसमें से कम प्राप्त करने के लिए किसी को भी पूर्व निर्धारित नहीं किया गया है। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे अति महत्वपूर्ण नियुक्ति में अयोग्य होने के विषय में उसकी चिंता को गुप्त रूप से बताया था। मैंने महसूस किया कि जिन बातों को लेकर वो चिंतित थी मामूली थे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत अच्छे अपने कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न और उसके भरोसे का आदर करना चाहती थी। मैंने आश्वासन के वचन कहे और अपने हृदय में मैंने याचना की कि परमेश्वर उसका स्वर्गीय पिता उसे उसके प्रेम के साथ शक्ति और उसकी सहमति की गवाही दे जब वो उसका कार्य करती है। आप सब के लिए मेरी यही प्रार्थना, मैं आशा करता हूँ आप सब उसके दृश्य में सहमति पाए। मैं आशा करता हूँ विवाह फले फूले और परिवार तरक्की करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and congregation will now stand.
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़ी होकर और मिलकर गाएंगी। We thank thee, O God, for a prophet. गीत के पश्चात हम एल्डर विलफोर्ड डब्ल्यू एंडरसन, डेल जी रेवलेंट और माइकल टी रिंगवुड सत्तर के से सुनेंगे।
This is the 185th annual general conference.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर का 185th अर्थवार्षिक महासम्मेलन है।
brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview of a young doctor.
सालों पहले मैं रेडियो पर एक युवा डॉक्टर का साक्षात्कार सुन रहा था जो अस्पताल में नवाजो इंडियन रिजर्वेशन एरिजोना काम करता था. उसने एक अनुभव बताया. वह एक रात जब एक बूढ़ा व्यक्ति स्थानीय अमेरिकन लंबी दाढ़ी के साथ आपातकालीन में आया, युवा डॉक्टर ने अपना क्लिपबोर्ड लिए उसके पास आया और कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. व्यक्ति ने सीधे उसकी ओर देखा और कुछ कहा नहीं. डॉक्टर कुछ कुछ अपना धैर्य खो रहा था. फिर कोशिश की, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप बोलेंगे नहीं. उसने कहा, मुझे बताइए आप अस्पताल कैसे आए. बूढ़े व्यक्ति ने सीधे उसकी ओर देखा और कहा, आप नृत्य करते हैं. अजीब से प्रश्न पर युवा डॉक्टर ने चिंतन किया जो उसके सामने आया था कि शायद उसका मरीज अधिक दवाइयों वाला व्यक्ति हो या अपनी पुरानी परंपरा अनुसार बीमारों को ठीक नृत्य और संगीत द्वारा करते हो, ना कि लिखित दवाई से. नहीं, डॉक्टर ने कहा, मैं नहीं नाचता. आप नाचते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने सर हिलाकर हाँ कहा. फिर डॉक्टर ने पूछा, क्या आप मुझे नाचना सिखा सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति के जवाब के कारण मुझे कई वर्षों तक मुझ पर असर डाला था. मैं तुम्हें नाचना सिखा सकता हूँ, उसने कहा था, परंतु तुम्हारे पास संगीत होना चाहिए. कभी कभी हमारे घरों में हम सफलतापूर्वक नृत्य कड़ी दर कड़ी सिखाते हैं, परंतु उसमें सफल नहीं हुए मदद करने में अपने परिवार को संगीत सुनना सिखाएं. ये दवा पुरानी है, मनुष्य जानता है. बिना संगीत के नृत्य करना ये बहुत कठिन है. संगीत बिना नृत्य बहुत बुरा लगता है और यहाँ तक शर्मिंदगी होती है. क्या कभी आपने इसकी कोशिश की है? सिद्धांत और अनुबंध भाग 8 में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ ऑलिवर कॉर्डरी को सिखाया था, हाँ देखो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारे मन और हृदय में बतलाऊंगा जो तुम्हारे पर आता है और जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है. हम नृत्य के कदमों को दिमाग से सीखते हैं, परंतु संगीत को दिल से सुनते हैं. सुसमाचार के नृत्य के कदमों को हम कर सकते हैं. सुसमाचार का संगीत आत्मा में खुशी का एहसास देता है जो कि पवित्र आत्मा से आता है. यह हृदय परिवर्तन लाता है और यहाँ सारे नेक अभिलाषाओं का आधार है. नृत्य को अनुशासन की जरूरत है, लेकिन नृत्य के आनंद का अनुभव पूरा होता है जब हम संगीत को सुनते हैं. यहाँ पर कुछ लोग गिरजे के सदस्यों का उपहास करते हैं. जो काम हम करते हैं उसे समझा जाता है. वे जो अक्सर नृत्य करते हैं, अजनबी से या बुरे या आत्मिक शब्द में विशिष्ट लगते हैं, उनको जो संगीत नहीं सुन सकते हैं. क्या कभी आपने बत्ती पर गाड़ी रोकी है? वहाँ जहाँ अपनी गाड़ी का ड्राइवर पूरे जोश में नाच गा रहा हो, परंतु आप उसे सुन ना पा रहे हो क्योंकि आपकी खिड़की के शीशे खुले ही ना हो. सच में अजीब है. यदि हमारे बच्चे नृत्य को सुसमाचार के संगीत की सुंदरता के एहसास को सीखे बिना सीख जाते हैं, वे समय समय पर नृत्य के साथ बेचैन हो उठेंगे और शायद नृत्य करना छोड़ दें या लगभग बुरे तनाव के कारण नृत्य करते रहें उसकी वजह से जो उसके साथ नृत्य कर रहे हों. चुनौतियों हम सभी के लिए हैं जो सुसमाचार को पाठ्यक्रम से बढ़कर शिक्षा सिर्फ नृत्य को कदमों से परे हटकर सोचते हैं. हमारे बच्चों की खुशी उसकी सुनने की योग्यता पर निर्भर होती है और सुसमाचार के संगीत के सुंदरता से प्रेम करते हैं. हम इसे कैसे कर सकते हैं? पहला, हमें अपने जीवन को आत्मिकता आवृत्ति की तरंग पर केंद्रित करना चाहिए. पुराने दिनों को लौटते हैं. आधुनिक युग से पहले हमें हमारा पसंदीदा रेडियो स्टेशन ध्यानपूर्वक रेडियो पर लगाने लगते थे जब तक ना लग जाता आवृत्ति के साथ. जैसे हम नंबर लगाते, हम केवल सुनते थे, परंतु जब हम आखिरकार सही स्टेशन लगाते थे, हमारा पसंदीदा संगीत सफाई से सुन सकते थे. हमारे जीवनों में हमें आत्मा के संगीत को सुनने के लिए सही आवृत्ति को निमंत्रित करके रखना चाहिए. जब बत्तीसवें के बाद हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम स्वर्गीय संगीत से भर जाते हैं. वह संग परिवर्तित होता है, हमारा हृदय बदल जाता है और हमारे भीतर कुछ भी बुरा नहीं होता, परंतु अच्छाई लगातार करते रहना है. लेकिन आत्मा बुरी या घृणा या जलन को बर्दाश्त नहीं करता है। यदि हम उस कोमल भाव को अपने जीवन में खो देते हैं, सुसमाचार की अति मधुरता जल्द ही कर्कश में बदल जाती है और थक हार के शांत हो जाती है। एल्मा ने पहला प्रश्न पूछा था, यदि तुम मुक्ति के प्रेम संगीत को सुनने का अनुभव किया है, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अभी भी महसूस कर सकते हो? अभिभावकों, यदि आपका सुसमाचार का संगीत के लय से बाहर हो गया है, उसे लय पर लाना होगा। अध्यक्ष मॉनसन ने पिछले अक्टूबर में सिखाया था, हम अपने पद के पद पर चिंतन करना चाहिए। हमें पता है कैसे करना है। हम चाहे समान पद पर चलें जिस पर हमें चलना है, जब पहले हम सुसमाचार संगीत स्वर्गीय तनाव में सुनते हैं। हमें मसीह में विश्वास करने का अभ्यास करना, पश्चाताप और प्रभु बोझ लेना है। हमें पवित्र आत्मा का प्रभाव अच्छे से पड़ता है और सुसमाचार का संगीत दोबारा से हमारे जीवनों में बजना शुरू होता है। दूसरा, जब हम संगीत को स्वयं सुन सकते हैं, हमें उसे अपने घरों में अच्छे से करना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसे जोर या जबरदस्ती से करा सकते हो। कोई शक्ति या प्रभाव को पौरोहित्य के सदाचार की इच्छा के द्वारा बनाकर रखा जा सकता हो, या पिता होने के द्वारा, या माँ, या बहुत बड़े, या बहुत जोर से, केवल धारणा द्वारा, लंबे समय से दुख झेलने द्वारा, या कोमलता और निम्रता द्वारा, निष्कपट प्रेम द्वारा और करुणा द्वारा। क्यों ऐसी विशेषता बल को बढ़ती की ओर, प्रभाव की ओर ले जाती है? क्योंकि ये जो कि विशेषित पवित्र आत्मा की आत्मा को प्रमंत्रित करता है, यह हमारे हृदय को सुसमाचार संगीत की मधुरता की विशेषता से लगता है। जब यह प्रस्तुत होते हैं, नृत्य के कदम अपने आप से और परिवार में सभी नृत्य करने वालों के आनंद द्वारा होने लगते हैं, किसी के डराने या धमकाने या विवशता के जरूरत के बिना होने लगते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम उनके लिए प्रेम लोरी गाते थे, और जब वे जिद करते थे और रात में सोने जाने से इनकार करते, हमें लंबे दुखों की लोरी को गाने की जरूरत होती थी। जब वे युवा हुए, हम बहसबाजी का शोर मचाते और धमकी देते, और इसके बावजूद सुंदर संगीत की धारण प्रस्तुत करते थे, और शायद लंबे दुखों की लोरी की दूसरी आयत को गाने लगते थे। अभिभावक संपूर्ण लय को आगे पीछे रखकर नम्रता और विनम्रता को विशेषता की ओर पेश करते थे। हम अपने बच्चों को साथ में गाने का तालमेल करने का निमंत्रण दे सकते हैं, जैसे हम पड़ोसी जो जरूरतमंद हो के लिए करते हैं। यह एकदम से नहीं आता है। जैसे गुणी संगति जानते हैं, सुंदर संगीत को प्रस्तुत करने को कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर शुरुआती संगीत को बनाने में परिश्रम में कर्कशता और फूट दिखाई देता है, याद रखें कि फूट को वाद विवाद द्वारा सही नहीं किया जा सकता। घर में फूट पड़ना जैसे कमरे में अंधेरा। यह अंधकार को डांटना थोड़ा अच्छा लगता है। हम अंधकार को रोशनी द्वारा ही हटा सकते हैं। तो यदि आपके घर का बास अधिक जोर से बर्दाश्त से बाहर है, या तारों को क्षेत्र बहुत छोटा या पैना है, या यदि वे छोटा, या पियानो अविवेकी या लय और धुन से बाहर है, धैर्य रखें। यदि आप घर में सुसमाचार के संगीत को नहीं सुनते, कृपा करके यह दो शब्द स्मरण रखें। अभ्यास करते रहो, परमेश्वर की मदद के साथ दिन आएगा जब सुसमाचार संगीत आपके घर को अनकहे आनंद से भर देगा। यहाँ तक कि जब आप अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, संगीत हमारी सारी परेशानी का हल नहीं करेगा। वहाँ पर अभी भी हमारे जीवन में आरोही और अवरोही तीखे और भंग तरीके से गाए जाएंगे। ऐसा ही स्वभाव है पृथ्वी पर जीवन का। लेकिन जब संगीत को नृत्य से जोड़ते हैं, कभी कभी शादी के मुशल्लत और परिवार को परंपरा मधुर संतुलन की ओर बढ़ते हैं। हमारी प्रत्येक चुनौतियां दुख भरा भाव और मूल भाव से बढ़ती जाएंगी। पौरोहित्य के सिद्धांत का आरंभ हमारे छने हुए आत्माओं पर पड़ता है, जिस स्वर्ग से ओस। पवित्र आत्मा हमारा स्थायी साथी है और हमारा अधिकार है। एक साफ संदर्भ बल और प्रभावित होने का एक अपरिवर्तित नेकता और सच्चाई का होगा और हमारा शासन एक अंत शासन होगा और वास्तविक के अर्थ के बिना यह हमारे भीतर ही बहता रहता है और यह हमारे सबों के जीवन में रहे और हमारा यह परिवार हम मेरी प्रार्थना में है यीशु मसीह के नाम में आमीन।
My dear brothers and sisters, in December 2013, the world mourned the death of Nelson Mandela.
जब हम निरंतर प्रयास करते और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करते हैं तो हम सच्चे अंतिम दिनों के संत हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सितंबर 2013 में विश्व ने नेल्सन मंडेला की मृत्यु का शोक मनाया था। रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनकी भूमिका के कारण 27 वर्ष के कारावास के बाद मंडेला लोकतंत्र रूप से चुने गए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें कारावास में डाला था, उनको क्षमा करना एक उल्लेखनीय कदम था। इसके लिए सभी ने उनकी व्यापक प्रशंसा और सम्मान किया था। मंडेला अक्सर प्रशंसा किए जाने के लिए यह सुनकर माना करते थे, मैं कोई संत नहीं, अर्थात जब तक आप नहीं सोचते कि एक संत पापी है जो कि सुधरने का प्रयास करता है। ये कथन एक संत पापी है जो सुधरने का प्रयास करता है गिरजे के सदस्य के आश्वासन और जोश दिलाता है। यद्यपि हमें अंतिम संतों के रूप में उल्लेखित किया जाता है, हम कभी कभी इस उल्लेख को पसंद नहीं करते। शब्द संत सम्मान्य से उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्होंने पवित्र परिवर्तन का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हमारे धार्मिक विचार हमें सिखाते हैं यद्यपि हम निरंतर और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण मसीह क्या सिद्धांत उस पर विश्वास रखने पर पश्चाताप करने बपतिस्मा के अनुरोध और आशीषों को नवीन करने के लिए प्रभु भोज लेने और स्थायी स्थान के रूप में पवित्र आत्मा लेने पर भरोसा करते हुए परिवार को परिपूर्ण करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम मसीह सम्मलन बन जाते हैं और अंत तक ऐसे बने रहते हैं। हम औपचारिक शब्दों में परमेश्वर इस बात की अधिक चिंता करते हैं हम क्या हैं और हम क्या बन रहे हैं बजाय इसके के लिए कि हम क्या ध्यान देते हैं कि हम निरंतर प्रयास करते हैं। अंग्रेजी नाटक विलियम स्पीकर शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हास्य नाटक एज यू लाइक इट नाटक के पात्र हैं। ये सब जानते हुए कि छोटा भाई अपने भाई को मरने को भेजता है, जब बड़े भाई को इस दया के बारे में पता चलता है वह परिपूर्ण से और हमेशा के लिए बदल जाता है और जिससे वह परिवर्तन करता है। बाद में बहुत सी स्त्रियां बड़े भाई के पास आती हैं और पूछती हैं, क्या वह तुम नहीं थे जिन्हें कई बार अपने भाई को मरवाने की योजना बनाई थी। बड़ा भाई जवाब देता है, मैं था लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे आपको बताने में झिझक नहीं है कि पहले मैं कैसा था क्योंकि मेरा परिवर्तन मेरे लिए बहुत सी सुखद है और इसी कारण मैं वैसा ही हूँ जो मैं अब हूँ।
For us, because of God's mercy,
क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की दया और यीशु मसीह के प्रयाश्चित के कारण इस तरह का परिवर्तन मात्र कहानी में नहीं देता। अहिजकेल के द्वारा प्रभु बताता है, जैसा कि दुष्ट की दुष्टता भी जो हो जब वह उससे फिर जिया तो उसके कारण वह ना गिरेगा। यदि वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगेगा, दुष्ट जान बंद फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं फेर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायी विधियों पर चलने लगे तो वह ना मरेगा, वह निश्चित विचित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, उसने न्याय और धर्म के काम किए। अपने अनुग्रह में परमेश्वर क्षमा का वादा करता है जब हम दुष्ट और पश्चाताप करते और इनसे फिर जाते हैं, इतना अधिक कि हमारे पापों को हमें बताया भी नहीं जाएगा क्योंकि हम मसीह के प्रायश्चित और अपने प्रायश्चित के कारण हम पिछले कार्यों को देखकर कह सकते हैं, मैं था लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। बेशक कितने भी दुष्ट रहे हों हम कहते हैं मैं पहले वैसा था लेकिन वह पुराना दुष्ट मैं अब बिल्कुल नहीं हूँ। अध्यक्ष मॉन्सर ने सिखाया हमारे लिए परमेश्वर के महत्तम उपहारों में से एक है फिर से कोशिश करने की खुशी, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, बेशक हमने जानबूझकर पाप किए हो या बार बार असफलता और निराशा का सामना किया हो। जिस क्षण फिर से कोशिश करने का निर्णय लेते हैं, मसीह का प्रयास हमारी मदद करता है। और हमें याद रखने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमसे कभी नहीं बोलती कि हमने बहुत कोशिश कर ली और अधिक करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों के संतों पाप पर विजय पाने के अलावा अन्य बातों में भी कोशिश करते हैं, चाहे हम कुटुंब संबंधों के कारण दुखी हो, आर्थिक चुनौतियों के कारण या बीमारियों या किसी अन्य के पापों के परिणाम स्वरूप उद्धारकर्ता का असीमित प्रायश्चित उनको भी चंगाई दे सकता है, विशेषकर जो निर्दोष होते हुए भी दुख सहते हैं। वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं निर्दोष होते हुए किसी अन्य के पापों के कारण बहुत असहनीय कैसा होता है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई है, उद्धारकर्ता खेदित मन के लोगों को शांत दूं, विलाप करने वालों को शांति दूं, राख दूं, उनके सिंदूर पगड़ी बांध दूं, विलाप द्वार करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढूं। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों के संत निरंतर कोशिश करते रहें। जिस प्रकार परमेश्वर अंतिम होता है, जब हम परमेश्वर के द्वारा निरास प्रयत्न करते रहते हैं, उसी प्रकार वह निराश होता है जब हम यह नहीं देखते कि लोग भी कई प्रकार के रहते हैं। हमारी प्रिय मित्र धोबा ने बताया था कि कैसे उसने इस सबक को अपनी माँ जूलिया से सीखा था। जूलिया और थोबा दक्षिण अफ्रीका में आरंभिक प्रवर्तन काले सदस्य में से थे। लंगबेदी हुकूमत समाप्त होने के बाद गिरजे के काले और गोरे सदस्य को एक साथ मिलकर गिरजे में जाने की अनुमति मिल गई थी। बहुतों के लिए भिन्न जाति के लोगों के साथ बात करना न्याय और चुनौतीपूर्ण था। एक बार जब जूलिया और थोबा गिरजे में गए, उन्होंने महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गोरे सदस्यों ने दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया था। जब गिरजे से निकले, थोबा ने जोरदार ढंग से अपनी माँ से इसकी शिकायत की। जूलिया शांत से सुनती रही जब तक थोबा ने अपनी निराशा बताना समाप्त नहीं किया। जूलिया ने कहा, ओ थोबा, गिरजा के एक बड़े अस्पताल की तरह है और हम सब किसी न किसी रूप में बीमार हैं। हम गिरजे में ठीक होने के लिए आते हैं। जूलिया की बात ने एक बहुमूल्य दृष्टिकोण को दर्शाया है। हमें न केवल सहनशील बने रहना चाहिए, क्योंकि अन्य अपने स्वयं की अत्यधिक बीमारी से ठीक होने का प्रयास कर रहे होते हैं, बल्कि हमें दयालु, धैर्यवान और समझदार भी बनना चाहिए। जब परमेश्वर हमें कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित करता है, वह यह भी आशा करता है कि हम भी दूसरों की उनकी क्षमता के अनुसार वैसा करने का मौका दें। पश्चात हमारे जीवनों और अधिक मात्रा में प्रभावकारी होगा। हम फिर समझ पाएंगे कि नजर आने वाली भिन्नताएं के होते हुए भी हम सभी को एक समान असीमित प्रायश्चित की आवश्यकता है। बहुत साल पहले एक कर्टिस नाम के एक युवक को मिशन में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह उस तरह का प्रचार था जिससे पाने की कामना प्रत्येक मिशन अध्यक्ष करता है। वह एकाग्र चित्त और मेहनती था। एक बार उसे एक ऐसा प्रचारक साथी दिया गया जो अपरिपक्व और सामाजिक रूप से असभ्य और कार्य करने के लिए विशेष उत्साही नहीं था। एक दिन वे दोनों साइकिल पर जा रहे थे। कर्टिस पीछे मुड़ा और देखा कि उसका साथी बिना कारण साइकिल से उतरकर पैदल चल रहा था। मन ही मन कर्टिस ने अपनी निराशा परमेश्वर को व्यक्त की। ऐसे साथी के साथ नियुक्त किया जाना बहुत ही कठिन है, जिसे कुछ भी हासिल करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन की जरूरत है। कुछ क्षणों के पश्चात कर्टिस को प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई, मानो परमेश्वर उसे कहता रहा हो, कर्टिस तुम जानते हो मेरे लिए तुम दोनों भिन्न नहीं हो। कर्टिस ने सीखा कि उसने अपने अपूर्ण साथी के साथ धैर्यवान होने की आवश्यकता थी, जो कि अपने स्वयं के लिए के तरीके के परिपूर्ण होने का प्रयास कर रहा था। हम सबको के लिए हम सबके लिए मेरा निमंत्रण है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, पश्चात करें और कोशिश करना जारी रखें। यदि हम कोशिश नहीं करते हैं तो हम केवल अंतिम दिनों के पापी हैं। यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अंतिम दिनों के हार मानने वाले हैं। यदि हम दूसरों के प्रयास नहीं करने देते तो हम अंतिम दिनों के दिखावा करने वाले हैं। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करते हैं तो हमें सच्चे अंतिम दिनों के संत हैं। जब हम बदलते हैं हम पाते हैं कि परमेश्वर अधिक चिंता करता है कि हम कौन हैं और पिछला जीवन छोड़कर हम क्या बनना चाह रहे हैं। मैं उधारकर्ता को उसके असीम प्रायश्चित और अंतिम दिनों के भविष्य वक्ताओं को हृदय से आभारी हूँ जो हमें अंतिम दिनों का संत बनाने के प्रति निरंतर कोशिश करने के लिए उत्साहित करते हैं। मैं उधारकर्ता की जीवित सच्चाई के गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Unfortunately, there was a time in my life when I was
मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं पद और अधिकार से प्रेरित था। वास्तव में इसकी शुरुआत भोलेपन से हुई। जैसे कि मैं पूरे समय के मिशन की सेवा के लिए तैयारी कर रहा था, मेरे बड़े भाई को अपने मिशन पर जोन लीडर बनाया गया। मैंने उसके विषय में बहुत सी कही जाने वाली सकारात्मक चीजें सुनी जिसका मैं सहायक न हो, परंतु अपने लिए भी वैसी ही चीजें कहलवाना चाहता था। कृतज्ञता पूर्ण जैसे मैंने मिशन में अपनी सेविकाई की, मैंने एक प्रभावशाली शिक्षण सीखा। पिछले सम्मेलन में मुझे उसी शिक्षण का स्मरण हुआ। अक्टूबर में अध्यक्ष डीटर एफ उकडॉर्फ ने कहा, अपने जीवन की अवधि के दौरान मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कुछ अत्यधिक सक्षम और बुद्धिमान पुरुषों और स्त्रियों से कंधे रगड़ने का जो इस संसार को प्रदान किए गए हैं। जब मैं छोटा था मैं प्रभावित था उनसे जो शिक्षित, संपादित, सफल और इस संसार के द्वारा प्रशंसक थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों में मैंने ये एहसास किया है कि मैं उन प्रशंसनीय और आशीषित आत्माओं से कहीं अधिक प्रभावित हूँ जो कि वास्तव में अच्छे और बिना छल के हैं। मॉर्मन की पुस्तक में मेरा नायक एक संपूर्ण उदाहरण है प्रशंसनीय और आशीषित आत्मा का जो अच्छा और बिना छल के था। शेबलॉन आलमा का छोटे पुत्रों में से एक था। हम अधिकतर उसके भाइयों हिलमन से परिचित हैं, जो कि अनुसरण करता था अपने पिता के अभिलेखों का रक्षक बन और परमेश्वर का भविष्य वक्ता और कोरियंटन जिसे अर्जित कुछ कुख्याति प्रचारक जैसा, जिसे अपने पिता से सलाह की आवश्यकता थी। हिलमन को अल्मा ने लिखा 77 छंद, कोरियंटन को अल्मा ने 91 छंद समर्पित किए, शिबलॉन को अपने बीच के पुत्र को अल्मा ने केवल 15 छंद लिखे। फिर भी उसके शब्द इन छंदों में शक्तिशाली और शिक्षाप्रद हैं। और अब मेरे बेटे, में विश्वास करता हूँ कि तुम्हारी दृढ़ता और परमेश्वर, मैं तुम्हारी विश्वसनीयता के कारण तुम में मैं बहुत आनंदित होऊंगा, क्योंकि जैसा तुमने अपनी युवावस्था में प्रभु परमेश्वर की तरफ देखना आरम्भ किया है, वैसे ही मुझे आशा है कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, क्योंकि धन्य है वह जो अंत तक सहनशील है। मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी विश्वसनीयता और तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे लंबे समय के उत्पीड़न के कारण मैं तुम में पहले से ही महान आनंदित हो चुका हूँ। शिबलॉन से बोलने के अतिरिक्त आलमा ने उसके बारे में कोरियंच से भी बोला। आलमा ने कहा, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के प्रति क्या तुमने अपने भाई की दृढ़ता, उसकी विश्वसनीयता और उसकी निष्ठा को नहीं देखा? देखो, क्या उसने तुम्हारे लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं रखा है? ऐसा प्रतीक होता है कि शिबलॉन एक ऐसा पुत्र था जो कि अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था और वह सब सही करता चला गया, सही के कारण से ना कि प्रशंसा, पद, शक्ति, पुरस्कार या अधिकार के लिए। हिलमन को ये पता होगा और वह अपने भाई का आदर इस कारण करता होगा, उसने शिबलॉन पवित्र अभिलेखों की रखवाली दी जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुए थे। शिबलॉन वास्तव में अच्छा और बिना छल के था। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसने अपना समय, योग्यता और प्रयास दूसरों की मदद और उन्हें उठाने के लिए दिया, क्योंकि उसमें परमेश्वर और अपने सहकर्मियों के प्रति प्रेम है। उसका विवरण उत्तमता से अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने के शब्दों से दिया गया है, महान स्त्री और पुरुष जो शासन करने से ज्यादा हमेशा सेवा करने के उत्सुक होते हैं। एक ऐसे संसार में जहाँ की प्रशंसा, पद, शक्ति, पुरस्कार और अधिकार को हर तरफ तलाशा जाता है, मैं उन प्रशंसनीय और आशीषित आत्माओं का आदर करता हूँ जो कि वास्तव में अच्छे और बिना छलके हैं, जो कि परमेश्वर के और अपने पड़ोसियों के प्रेम से प्रेरित हैं, उन महान स्त्री और पुरुष जो शासन करने से ज्यादा सेवा करने के उत्सुक हैं। आज कुछ ऐसे हैं जो हमें विश्वास दिलाएंगे कि हमारी योग्यता की खोज की संतुष्टि केवल पद और शक्ति द्वारा प्राप्त हो सकती है, तथापि कृतज्ञता पूर्वक बहुत है जो कि अप्रभावित है इस स्वरूप से, वे योग्यता की खोज वास्तव में पाते हैं और अच्छे और बिना छल के बनकर। मैंने उन्हें जीवन के हर पद पर और विश्वास की बहुत सी परंपराओं में पाया है और मैं उन्हें अधिक संख्या में मसीह के सच्चे परिवर्तित अनुयायियों में पाता हूँ। मैं उनका आदर करता हूँ जो संसार के चारों ओर हर हफ्ते वार्ड और ब्रांचेस में निस्वार्थ सेवा अपनी बुलाहट से अधिक और जाकर पूरा करते हैं, परंतु बुलाहटें आती जाती रहती हैं। मैं और भी अधिक प्रभावित हूँ उन बहुत सारों से जो बिना किसी औपचारिक बुलाहट के दूसरों की निरंतर सेवा और उन्हें उठाने का मार्ग ढूंढ लेते हैं। एक भाई गिरजा जल्दी आकर कुर्सियों को लगाते हैं और फिर बाद में गिरजे को सही रखने के लिए रुकते हैं। एक बहन जानबूझकर बैठने की जगह अपने वार्ड की एक नेत्रहीन बहन के पास चुनती है, न केवल उसने मिलने के लिए परंतु इसलिए भी वह गीत ऊंचा गा सके ताकि वे नेत्रहीन बहन सुन सके। यदि आप अपने वार्ड या ब्रांच में ध्यान से देखें तो आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। ऐसे सदस्य हमेशा होंगे जिन्हें पता होगा किसे मदद चाहिए और कब उन्हें प्रदान करना है। शायद मेरा पहला शिक्षण मैंने वास्तव में अच्छे संत का बिना छल के एक युवा प्रचारक होकर सीखा। मैं एक एल्डर के साथ एक नए क्षेत्र में गया जिसे मैं नहीं जानता था। मैंने अन्य प्रचारकों को बात करते सुना था कि कैसे उसे कभी भी कोई नेतृत्व का कार्यभार नहीं दिया गया था और कैसे वह संघर्ष करता था कोरियन भाषा से, इसके बावजूद कि वह काफी समय से उस देश में था। परंतु जैसे कि मैं सिल्डर को जानने लगा, मैंने पाया कि वह सबसे आज्ञाकारी और विश्वसनीय प्रचारक था जिसे मैंने जाना। वह पढ़ता था जब पढ़ने का समय होता था, वह काम करता था जब काम होता था, वह कोरियन पढ़ते मेहनत था जबकि वह भाषा उसके लिए बहुत मुश्किल थी। जब मुझे एहसास हुआ कि जो टिप्पणी मैंने सुनी वह सत्य है, मुझे लगा कि इस प्रचारक को गलती से असफल समझा जा रहा है। मैं पूरे मिशन को बताना चाहता था। मैंने अपने मिशन अध्यक्ष से अपनी इच्छा इस गलतफहमी को सही करने की बाटी। उनका उत्तर था, स्वर्गीय पिता इस युवा प्रचारक को जानते हैं और मैं भी, उन्होंने कहा, और अब तुम भी जानते हो, तो और कौन है जो महत्व रखता है। इस बुद्धिमान मिशन अध्यक्ष ने मुझे सिखाया कि सेवा में क्या आवश्यक था और प्रशंसा पद शक्ति सम्मान या अधिकार नहीं। ये एक बड़ा शिक्षण था एक युवा प्रचारक के लिए जो शीर्षकों पर बहुत केंद्रित था। इस शिक्षण को अपने दिमाग में रखते हुए मैं वापस अपने जीवन को देखने लगा और ये देखने लगा कि मैं कितनी बार उन पुरुषों और स्त्रियों से प्रभावित हुआ हूँ जिनके पास उस समय कोई बड़ा पद या अधिकार नहीं था। उनमें से एक शिबलॉन जैसी आत्मा मेरे सेमिनरी शिक्षक थे मेरे हाई स्कूल में जूनियर साल के दौरान। इस अच्छे पुरुष ने सेमिनरी केवल 2 या 3 वर्ष के लिए पढ़ाई, परंतु उन्होंने मेरा मन इस तरह से खोला कि उससे मेरी मदद हुई, गवाही प्राप्त हुई। वे सबसे लोकप्रिय शिक्षक नहीं थे स्कूल में, परंतु वे हमेशा तैयार थे। उनका पर एक शक्तिशाली और स्थायी प्रभाव था। कुछ समय में एक बार मैंने इस पुरुष को वर्षों में देखा जब से उन्होंने मुझे पढ़ाया था। वे मुझे मेरे पिता के अंतिम संस्कार में देखने आए। वास्तव में वह कार्य था जो पद और शक्ति से प्रेरित नहीं था। मैं आदर करता हूँ समर्पित शिक्षक का और बहुत से उसे उन्हें जो कि वास्तव में अच्छे और बिना छल के हैं। मैं आदर करता हूँ रविवार विद्यालय शिक्षक का जो न केवल अपने छात्रों को रविवार की कक्षा में पढ़ाता है, परंतु उन्हीं छात्रों को सिखाता और प्रभावित करता है, उन्हें अपने परिवार के साथ नाश्ते में आमंत्रित करता है। मैं आदर करता हूँ युवा अध्यक्षों का जो अपने वार्ड के युवक और युवती के खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मैं आदर करता हूँ उस पुरुष का जो अपने पड़ोसी का प्रोत्साहन का नोट लिखता है और उस स्त्री को जो क्रिसमस के कार्ड को डाक से ना भेजकर अपने हाथ से उन परिवार के सदस्य और मित्रों को देती है जिन्हें वे भेंट की आवश्यकता है। मैं आदर करता हूँ उस भाई का जो नियम से पड़ोसी को सैर के लिए ले जाते हैं अल्जाइमर के अंधकार भरे दिनों में। ये चीजें प्रशंसा या पुरस्कार के लिए नहीं की जाती। ये पुरुष और स्त्री पद या अधिकार पाने की संभावना से प्रेरित नहीं है। वे मसीह के चेले हैं, निरंतर अच्छा करते जा रहे हैं और शिबलॉन की तरह स्वर्ग में अपने पिता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे उदास करता है जब मैं सुनता हूँ कि कोई ने सेवा करना या गिरजा भी आना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपनी बुलाहट से सेवा मुक्त कर दिया गया या एहसास हुआ कि किसी पद या शीर्षक के प्रति अनदेखा किया गया। मैं आशा करता हूँ कि वह वही शिक्षण को सीखेंगे जो मैंने एक युवा प्रचारक खो सीखा था कि उस सेवा की गिनती आमतौर पर सबसे अधिक केवल परमेश्वर द्वारा ही मान्य होती है। हमारी मुझे और मेरी की तलाश में क्या हम आप और आपको भूल गए हैं? कुछ हो सकता है कि कहें किंतु मुझे बहुत दूर तक जाना होगा उनकी तरह बनने के लिए जिनका विवरण आप दे रहे हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार की अच्छी खबर यह है कि हमारे मनों की इच्छाओं का रूपांतरण हो सकता है और हमारे इरादों को शिक्षक और परीक्षित किया जा सकता है। जब हम परमेश्वर के सच्चे बाड़े में बपतिस्मा लेते हैं, हम नए प्राणी बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हर बार जब हम बपतिस्मे के अनुबंध का नवीकरण प्रभु बोज को लेकर करते हैं, हम एक और कदम उस परम लक्ष्य के पास होते हैं। जैसे कि हम उस अनुबंध में दृढ़ रहते हैं, हमें शक्ति का आगमन होता है उनके साथ दुखी होने का जो दुखी है, और दिलासा देने का जिन्हें दिलासा की जरूरत है। उस अनुबंध में हम दया को पाते हैं जो हमें परमेश्वर की सेवा और उसकी आज्ञाओं को रखने के लिए करती है। सम्मिलित करते हुए परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम करना और अपने पड़ोसी को भी अपनी तरह प्रेम करना। उस अनुबंध में परमेश्वर और मसीह हमारी सहायता करे ताकि हम उनकी सहायता करें जिनको हमारी है। मैं अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देता हूँ शिबलोन जैसी आत्माओं का, जिसका उदाहरण मुझे और हम सबको प्रस्तुत करता है आशा। उनके जीवन में हम एक प्यारे स्वर्ग में पिता और एक ध्यान रखने वाले और दयावान उद्धारकर्ता की साक्षी देते हैं। मैं शामिल करता हूं अपनी गवाही को उनकी, मैं इस प्रण के साथ कि मैं और प्रयत्न करूं उनके जैसा बनने का, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
We are grateful for all who have spoken to us.
हम उन सभी का जिन्होंने इस दोपहर में हमसे वार्ता की है और मोहक संगीत जो पेश किया गया का तह दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम जनरल पुरोहित्य सभा के भाइयों को याद दिलाते हैं जो कि यह इस संध्या के आरंभ में शाम 6 माउंटेन डेलाइट टाइम्स में होंगे। राष्ट्रीय के मॉर्मन गायन मंडली का प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 माउंटेन डेलाइट टाइम्स से होगा। तुरंत बाद रविवार जनरल सम्मेलन अधिवेशन का आरंभ होगा। अब हम विनम्रता से एल्डर क्विंटिन एल कुक 12 प्रेरितों की परिषद से को सुनने जो हमारे अंतिम वार्ताकार है। उनके टिप्पणी के पश्चात गायन मंडली इस सभा का समापन लेट अस ऑल प्रेज़ ऑन गीत के द्वारा करेंगे। फिर समापन प्रार्थना एल्डर रैंडी डी फंग 70 के द्वारा दी जाएगी।
Jesus Christ. The clamor that reverberates across the earth because of worldly wickedness creates feelings of vulnerability. With modern communication, the impact of iniquity, inequality, and injustice leave many feeling that life is inherently unfair. As significant as these trials can be, they must not distract us from rejoicing in and celebrating Christ's supernal intercession in our behalf. The Savior literally gained the victory over death. With mercy and compassion, he took upon himself our iniquity and transgressions, thus redeeming us and satisfying the demands of justice for all who would repent and believe on his name. His magnificent atoning sacrifice is of transcendent significance.
उसके अद्भुत प्रायश्चित बलिदान की श्रेष्ठ को समझना हम नश्वर लोगों के लिए कठिन है। अनुग्रह का ये कार्य ऐसी शांति प्रदान करता है जो समझ से बिल्कुल परे है। फिर हम कैसे उन कठोर सच्चाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमारे चारों ओर है। मेरी पत्नी मैरी ने हमेशा सूरजमुखी के फूल पसंद किया है। वे आनंदित होती है जब वे एकदम असंभव स्थानों सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं जहां मेरे दादा दादी का घर है। वहां जाने की सड़क कच्ची है। जब हमने उस सड़क पर जाते हैं मैरी अक्सर पूछती है क्या तुम सोचते हो आज हमें वे खूबसूरत सूरजमुखी के फूल दिखाई देंगे। हमें आश्चर्य होता है कि सूरजमुखी के फूल ऐसी मिट्टी पर बहुतायत से होते हैं जो कि खेती बाड़ी और बर्फ हटाने के उपकरणों से प्रभावित होते हैं और जिसमें ऐसे पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं
despite the many terrible circumstances that surround us. He truly is our light and life. In the parable of the wheat and the tares, the Savior declared...
गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत में उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों को बताया था कि उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन विश्वासियों के विषय में मैं बोलता हुए उसने कहा था, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेगी। मसीह के शिष्यों के रूप में ऐसे प्रतिकूल संसार में रहते हुए जो सच में बहुत अशांति का अवस्था में है, हम फल फूल और खिल सकते हैं यदि हमारी जड़ें मजबूती से उद्धारकर्ता के प्रति हमारे प्रेम जमी होंगी और विनम्रता से उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। सच और मजबूती के अडिग रहने और जीवन के उतार चढ़ाव के होते हुए उद्धारकर्ता का अनुसरण करने हमारी योग्यता को धार्मिक परिवारों और हमारी वार्ड और शाखाओं में मसीह केंद्रित एकता से अत्यधिक ताकत मिलती है। परमेश्वर की योजना में परिवार की भूमिका हमारे लिए खुशी लाना, प्यार भरे माहौल में सही सिद्धांतों को सिखाना और हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करना है। घर में धार्मिक गतिविधियों को, सुंदर परंपराओं को हमारे बच्चों के हृदय में डालने की जरूरत है। मैं अंकल वॉगन रॉबर्ट्स किम्बल के अच्छे विद्यार्थी लेखक बनने के महत्वाकांक्षी और बीवाईयू में फुटब�ल खेलते थे। 4 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण होने के एक दिन बाद वे यूएस नेवी में चले गए। एल्बनी न्यूयॉर्क में भर्ती के समय उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख छापने दिया। पत्रिका ने उन्हें $200 दिए थे और उनके लेख को मई 1944 में द राइट टाइम एट होम शीर्षक से छपा था।
मेरा यूटा घड़ी का समय दिखा रही है। मैं दक्षिण यूटा का हूँ। जब मैं नेवी में भर्ती हुआ था तब मेरे पिता ने मुझे ये घड़ी दी थी। उन्होंने कहा था मुझे घर का याद रखने में मदद मिलेगी। जब मेरी घड़ी सुबह 5 दिखाती है, मुझे पता चलता है कि मेरे गाय पिताजी गाय के दूध निकालने गए हैं, और रात को जब 7:30 बजे दिखाती है, मुझे पता चल जाता है कि पूरा परिवार खाने की मेज पर चारों ओर बैठा है और पिता भोजन के लिए परिवार परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है और मुझे मेरी देखभाल के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा मैं जान सकता हूँ किस समय मैं पर्याप्त रूप से सहज हो सकता हूँ। मैं यह जानने को चाहता हूँ कि यूटा में क्या समय हुआ है। इस लेख के छपने के तुरंत बाद युआन को प्रशांत महासागर खड़े जहाज में नियुक्त किया गया। जहाज में 2 आत्मघाती हमले हुए और मेरे अंकल वॉगन सहित 400 लोग मारे गए। एल्डर स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने अपनी हार्दिक सहानुभूति वॉन के पिता को दी थी। वॉन की या उनके योग्यता और प्रभु के आश्वासन को बताते हुए जो कि मुझ में मरते हैं मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे क्योंकि यह देखने उनके लिए मधुर होगी। वॉन के पिता ने निम्रता से कहा था बेशक वॉन का शरीर सबुन में दफन हो गया है, परमेश्वर के हाथ वॉन को उसके स्वर्गीय घर पहुंचाएंगे। 28 साल के बाद अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने वॉन के विषय में एक महासम्मेलन में बोला था। उन्होंने कहा था मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं, मैंने उनके साथ गंभीर प्रार्थना की है। घर की शिक्षाओं के कारण इस बड़े परिवार में अनंत शिक्षाएं आशीषें आई थी। अध्यक्ष किम्बल ने प्रत्येक रविवार को घुटने के बलों झुककर दिन में दो बार अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करने की चुनौती दी थी। भाइयों और बहनों, यदि हम विश्वसनीय रूप से अपने घरों में पारिवारिक प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन, पारिवारिक आशीषें, शब्द के दिन का पालन करने, तो हमारे बच्चे जान जाएंगे कि घर में इस समय क्या हुआ है। वे स्वर्ग में अनंत घर के लिए तैयार रहेंगे, चाहे इस कठिन संसार में उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो। हमारे बच्चों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि घर में उनसे प्रेम किया जाता है जहां वे सुरक्षित हैं। पति और पत्नी एक समान सहभागी हैं। वे अलग अलग जिम्मेदारियों को पूरा मिलकर करते हैं। बच्चों पत्नी बच्चों को जन्म देती है जिसका पूरा परिवार आशीष होता है। पति पौरत्य प्राप्त कर जो संपूर्ण परिवार को आशीष करता है, लेकिन पारिवारिक परिषद में पत्नी और पत्नी एक समान सहभागी हैं, मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे और उन्हें कैसे अनुशासित किया जाएगा, पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, वे कहाँ रहेंगे, अन्य बहुत से पारिवारिक फैसले। यह सब निर्णय मिलकर प्रभु के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। उद्देश्य यह है एक अनंत परिवार। मसीह का प्रकाश उसके सभी बच्चों के हृदय में अनंत परिवार की प्रकृति को डालता है। मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक, जो हमारे धर्म का नहीं है, इस प्रकार का है, जीवन में बहुत कुछ चीजें महत्वहीन है, लेकिन परिवार की एक सच्चाई अति महत्वपूर्ण अनंत चीज, एक वस्तु का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए, इसके प्रति वफादार रहना चाहिए। गिरजे में हमारे उद्धारकर्ता का संगठित परिवार के रूप में केंद्रित रहने में सहायता रहता है। परिवार के अतिरिक्त गिरजे की भूमिका महत्वपूर्ण है। गिरजा परमेश्वर के सभी बच्चों को विशेष यीशु मसीह के सुसमाचार खिजाने के लिए माध्यम संगठन उपलब्ध कराता है, या उनके उद्धार के लिए उत्कर्ष की रीतियों को पूरा करने के लिए पुरोहित अधिकार उपलब्ध कराता है जो योग्य है उनको स्वीकार करने की इच्छा करते हैं। संसार में व्याप्त विवाद, अनेकता, विभिन्न संस्कृतियों, असमानताएं पर अधिक जोर दिया जाता है। गिरजे में भाषा इकाइयों के अलावा हमारे वार्ड और शाखाएं भौगोलिक हैं। हम क्लास या पद के अनुसार विभाजित नहीं करते। हम इस सच्चाई में आनंदित होते हैं कि सभी जातियां और संस्कृतियां एक धार्मिक समूह में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे वार्ड परिवार के लिए हमारा विकास खुशी और मसीह के समान बनने के व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है। संस्कृति में अक्सर लोगों को बांटती है, कभी कभी हिंसा और भेदभाव का एक स्रोत होता है। मॉर्मन की पुस्तक में भ्रष्ट पिताओं की इस परंपराओं की व्याख्या करने के लिए अत्यधिक परेशान करने वाली भाषा उपयोग की गया है, जो हिंसा, युद्ध, बुरे कार्य, अधर्म, लोगों के और राष्ट्रों के विनाश की ओर ले जाती है। धर्मशास्त्रों में गिरजे की इस संस्कृति की व्याख्या करने के लिए चार नफी से उत्तम आरंभ करने के स्थान कोई नहीं है, जो कि हमारे लिए सब जरूरी है। आयत 2 में कुछ इस तरह लिखा है, पूरे प्रदेश के लोग नीफाई और लमनाई दोनों ही प्रभु में परिवर्तित हुए। उनके बीच कोई विवाद और मतभेद नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ न्यायोचित तरीके से संबंध बनाया। 16 आयत में हम पढ़ते हैं, और जितने लोग परमेश्वर के हाथों रचे गए हैं उन सारे लोगों में निश्चय ही इन लोगों से अधिक कोई भी आनंदमय नहीं था। यह सच्चाई कि उनके बीच कोई विवाद ना था, परमेश्वर उनके प्रेम के कारण था जो उनके लोगों के हृदय में बसा था। इसी संस्कृति की हम इच्छा रखते हैं। गहरे सांस्कृतिक मूल्य और विश्वास उनका मूल अधिकार है जो हमें है। बलिदान, आभार, विश्वास और धार्मिकताओं की परंपरा का सुजोग कर और बचा कर रखी जाती है। परिवारों का उन परंपराओं का हमारा लेना चाहिए और सुरक्षित रखी जा निर्माण करती है। किसी भी संस्कृति में अति महत्वपूर्ण विशेषता उनकी एक भाषा है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जहां मैं रहता था, वहां 7 इकाइयां गैर निवासी भाषाओं की थी। भाषा के संबंध में हमारा सिद्धांत और अनुबंध के खंड 90 की आयत 11 में निर्धारित किया है, क्योंकि ऐसा होगा उस दिन प्रत्येक व्यक्ति सुसमाचार की परिपूर्णता को अपनी स्वयं की जबान और अपनी स्वयं की भाषा में सुनेगा। जब परमेश्वर के बच्चे अपने मातृभाषा में प्रार्थना करते हैं, वे भाषा उनके हृदय की भाषा है। यह स्पष्ट है कि हृदय की भाषा सभी लोगों के लिए बहुत प्रिय होती है। मेरा बड़ा भाई जोसेफ एक डॉक्टर है और कई सालों से सैन फ्रांसिस्को के बे में अभ्यास कर रहा है। गिरजे का एक वृद्ध सोमन सदस्य जो कि बीमार था, उसके क्लिनिक में आया, उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह पता लगा कि उसकी किडनी में स्टोन था, जिसका उचित इलाज किया गया। उस विश्वासी सदस्य ने बताया कि स्वर्गीय पिता से सामान्य भाषा में प्रार्थना करने का उसका लक्ष्य केवल यह था कि वह जान सके कि उसके शरीर में क्या तकलीफ है। सदस्यों के लिए सुसमाचार को अपने हृदय की भाषा में समझना महत्वपूर्ण है, ताकि वे सुसमाचार के सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थना और कार्य कर सकें। भाषाओं की विविधता और सुंदर प्रेरणादायक सांस्कृतिक पर्यायों के होते हुए भी हमारा हृदय एकता और प्रेम में एक होना चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई का समान आदर करना चाहिए। एक रहो, और यदि तुम एक नहीं हो तो तुम मेरे नहीं हो। जब हम उचित सांस्कृतिक विधाओं को संजोज कर रखते हैं, हमारा लक्ष्य सुसमाचार संस्कृति रिवाजों और परंपराओं में हर तरह से एक होना है। हम जानते हैं कि कुछ सदस्यों के पास सवाल और चिंताएं होती हैं जब वे अपने विश्वास और गवाहियों को मौजूद करने का प्रयास करते हैं। हमें उनकी चिंताओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें उनकी आलोचना नहीं करें, ना ही कोई अनुमान लगाएं। चिंताएं चाहे छोटी हो बड़ी हो, इसके साथ साथ उन लोगों को भी जिनके पास चिंताएं हैं, अपने विश्वास को अपनी गवाही का निर्माण करने के लिए हर संभव प्रशिक्षित करनी चाहिए। धैर्य और विनम्रता से सुसमाचार सिद्धांतों का अध्ययन करना, मनन करना, प्रार्थना करना, जीने से और उचित मार्गदर्शन से सलाह लेना और सवालों और चिंताओं को अच्छी तरह दूर किया जा सकते हैं। कुछ स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में अधिक संख्या गिरजे को छोड़ रहे हैं। आजकल पहले से अधिक संदेह और विश्वास है। यह बिल्कुल नहीं है। अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा कभी भी मजबूत नहीं रहा। गिरजे के रिकॉर्ड से यह नाम हटाने वालों की संख्या हमेशा बहुत ही थोड़ी थी, और वर्तमान समय में यह बहुत ही कम है। कई क्षेत्रों में जैसे मंदिर स्तुति के साथ इंडोर सदस्य, वयस्क पुरुष पूरा दशमांश देने वाले सदस्य, मिशन में सेवा करने वाले सदस्यों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अंतिम दिन के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर कभी नहीं रहा है। लेकिन याद रखें, लोगों का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में महान है। हम सब तक पहुंचते हैं। यह यदि कठिन सताइयां जिनका आप कभी सामना कर रहे हैं अंधकार में और भारी और लगभग असहनीय लगती हैं, तो गतसमनी की अत्यंत कष्टदायी आत्मा और कलवरी की समझ से परे अत्याचार और दर्द को याद करें, जिससे उद्धारकर्ता ने प्रायश्चित को पूरा किया, जो इस जीवन में होने वाले सबसे भयानक बोझ को दूर करता है। उसने इसे आपके लिए किया था। उसने इसे मेरे लिए किया था। उसने इसे किया था क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वह अपने पिता की आगे का मानता है और उसे प्रेम करते हैं। हमें मृत्यु से बचाया जाएगा, समुद्र की गहराइयों से भी। इस जीवन में और अनंत काल में हमारी सुरक्षा, व्यक्तिगत और पारिवारिक धार्मिकता, गिरजे की विधियों और दुर्गता उद्धारकर्ता का पालन करने में आती है। यह एक तूफान में हमारा शरण स्थल है। वो जो महसूस करते हैं कि वह अकेले हैं, आप यह जानते हुए अधिक रूप से धार्मिकता में डटे रहे कि प्रायश्चित आपको जितना आप समझते हैं उससे अधिक सुरक्षा और आशीष देगा। आपको उद्धारकर्ता का स्मरण रखें, उनका अनुबंध का पालन करें, परमेश्वर के पुत्र का अनुसरण करें, और जैसे सूरजमुखी का फूल सूर्य के प्रकाश का अनुसरण करता है, उसके प्रकाश और उदाहरण का अनुसरण करें। करने से हमें आनंद और सुख और शांति मिलती है, जैसे भजन संहिता 27 में और एक प्रिय स्तुति कहता है, द लॉर्ड इज माई लाइट। ईस्टर के इस सप्ताहांत को उदारकर्ता के प्रेरित के रूप में मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण गवाही देता हूं। मैं जानता हूं कि वह जीवित है। मैं उसकी आवाज को पहचानता हूं। मैं उसकी दिव्यता और उसकी प्रायश्चित की सच्चाई की गवाही देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Our Father in heaven.
हमारे परमपिता परमेश्वर और इस संचालन में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं. हम अपना धन्यवाद करते हैं आपसे जो हमने आपके संदेश सुने हैं और संगीत जो आपने हमें सुनाया है. हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें आपका ये सेशन करने को मिला और हम भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन को आपके प्रवक्ता मानते हैं और उनकी अध्यक्षता जो उनके साथ हैं हम उनके उनको प्यार करते हैं. हम उनको धन्यवाद करते हैं उनके काम के लिए उनके सिखा दे जो और हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो आज नए लोग इस संचालन में आए. उनके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनके लिए धन्यवाद और आज के दिन हम लोग बारों के आवाजों से माने गए और आपके पवित्र पुत्र के अटोनमेंट के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ने की हमें क्षमता दीजिए और ये सब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन था. इसमें गिरजे के जनरल अधिकारी और जनरल पदाधिकारियों में चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया और इस अश्वदिन के लिए संगीत का प्रसिद्ध गायक मंडली शामिल युवा अभिवेक बीघा स्टेक डेविस और वीबर क्षेत्रों के द्वारा पेश किया जाएगी. इसका प्रसारण बॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है.